नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने बुधवार को एक कार्यक्रम में कहा कि आधार कार्ड सरकारी वेलफेयर स्कीमों का आधार बेडरॉक बन गया है। इसकी मदद से सरकार को फेक और डुप्लीकेट लाभार्थियों की आसानी से पहचान करने में मदद मिलती है, जिसके कारण सरकार को 2,00,000 करोड़ रुपए अधिक बचाने में सफलता प्राप्त हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में आधार कार्ड के उपयोग को आसान बनाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बात करते हुए कांत ने कहा कि आधार कार्ड आज सभी सरकारी वेलफेयर स्कीमों के लिए आधार बन गया है। इसकी मदद से बिना किसी बिचौलिए के आसानी से तेजी के साथ सीधे लाभार्थी के खाते में पैसा भेजा जा सकता है और बड़ी मात्रा में सरकारी राजस्व बचाने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड दुनिया में सबसे सफल बायोमेट्रिक बेस्ड आइडेंटिटी प्रोग्राम है। इसकी सफलता को देखते हुए वर्ल्ड बैंक और यूएन जैसी संस्थाएं दुनिया के अन्य हिस्सों में लागू करने की चर्चा कर रही है। एयर इंडिया का अधिग्रहण करने के बाद टाटा लगातार एयरलाइन को बड़े फैसले ले रहा है। बुधवार को टाटा ने एयर इंडिया को लेकर बड़ा फैसला किया। एयरलाइन में काम कर रहे 55 साल से अधिक या फिर 20 साल से अधिक समय से काम कर रहे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति यानी VRS का विकल्प दिया है। कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक कैबिन क्रू मेंबर, क्लरिकल और अनस्किल्ड कर्मचारियों के लिए VRS लेने की सीमा 55 से घटाकर 40 कर दी गई है। वहीं कंपनी ने बताया कि जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेना चाहता है उसे 1 जून से लेकर 31 जुलाई के बीच VRS के लिए अप्लाई करना है, जिसके बाद कर्मचारियों को एक मुश्त राशि कंपनी की ओर से दे दी जाएगी। टाटा की इस कोशिश को एयरलाइन में पुराने स्थायी कर्मचारियों को कम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। नवंबर 2019 में एयरलाइन के पास 9,426 स्थायी कर्मचारी थे। एक तरफ एयर इंडिया ने कर्मचारियों के लिए VRS स्कीम का ऐलान किया है तो वहीं दूसरी तरफ एयरलाइन ने नई भर्तियां भी निकाल दी हैं। जानकारी के मुताबिक एयरलाइन फिलहाल मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और हैदराबाद में कैबिन क्रू के लिए भर्ती भी की जा रही है। विदेशी बाजार में मजबूत होते जा रहे अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया बृहस्पतिवार को शुरुआती कारोबार में 12 पैसे की कमजोरी के साथ 77.62 रुपए प्रति डॉलर के भाव पर आ गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 77.61 के भाव पर खुला, लेकिन थोड़ी ही देर में वह 77.62 रुपए के प्रति डॉलर पर आ गया। इस तरह पिछले कारोबारी दिवस के मुकाबले रुपये में 12 पैसे की गिरावट देखी गई। बुधवार को रुपया अपनी ऐतिहासिक गिरावट से उभरकर 21 पैसे की मजबूती के साथ 77.50 के भाव पर बंद हुआ था। रिलायंस सिक्योरिटीज के वरिष्ठ शोध विश्लेषक श्रीराम अय्यर ने कहा कि भारतीय मुद्रा की स्थिति में गिरावट डॉलर को विदेशों में मिल रही मजबूती और ऊंचे बॉन्ड प्रतिफल का असर है। दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं के समक्ष अमेरिकी डॉलर की मजबूती को आंकने वाला डॉलर सूचकांक 0.05% बढ़कर 102.55 पर पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा 1.57% गिरकर 114.46 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर आ गया। वहीं भारतीय बाजारों से विदेशी निवेशकों की निकासी का सिलसिला जारी है। स्टॉक एक्सचेंज से मिले आंकड़ों के मुताबिक बुधवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 1,930.16 करोड़ रुपए मूल्य के शेयरों की बिकवाली की। एशियाई बाजारों के कमजोर रुख के बीच घरेलू शेयर बाजार का मानक सूचकांक सेंसेक्स बृहस्पतिवार को शुरुआती कारोबार में 246 अंक गिर गया। 30 शेयरों वाला सूचकांक सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 246.06 अंक की गिरावट के साथ 55,135.11 अंक पर खिसक गया। इसी तरह NSE का निफ्टी भी 89.7 अंक कमजोर होकर 16,443.05 अंक पर आ गया। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में पावर ग्रिड, लारेंस एंड टर्बो, भारती एयरटेल, ITC, हिंदुस्तान यूनिलीवर और HDFC लिमिटेड में सर्वाधिक गिरावट देखी गई। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, इंडसइंड बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के शेयर लाभ में कारोबार कर रहे थे। एशिया के अन्य बाजारों में टोक्यो, हांगकांग और सोल के सूचकांक गिरावट पर कारोबार कर रहे थे, जबकि शंघाई बाजार में लाभ की स्थिति में देखी गई। अमेरिका के शेयर में बाजार बुधवार को गिरावट पर बंद हुए थे। सेंसेक्स बुधवार को 185.24 अंक यानी 0.33% नुकसान के साथ 55,381.17 अंक पर बंद हुआ था। निफ्टी भी 61.80 अंक यानी 0.37% गिरकर 16,522.75 अंक पर रहा था। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 1.56% गिरकर 114.48 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बुधवार को भारतीय शेयर बाजारों से 1,930.16 करोड़ रुपए के शेयरों की बिकवाली की। इस तरह विदेशी निवेशकों की निकासी का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, लेकिन इसके शुरू होने के लगभग 8 साल बाद बैंक अभी भी खातों को लागत के लिहाज से प्रभावी बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार जनधन योजना के खातों के वहन लागत का मेंटेनेंस दिए जा रहे लाभ से भी अधिक है। विशेषज्ञों के अनुसार जनधन खाता मेंटेन करने के लिए औसत लागत 3,200 रुपए से 3,500 रुपए प्रतिवर्ष है। भले ही अधिकांश रखरखाव प्रौद्योगिकी के माध्यम से इन्हें संभाला जाता है, लेकिन इसमें शामिल समय और हर नए खाते के लिए नियम व शर्तें सिरदर्द बन जाते हैं। एक MD ने कहा कि बैंकों के लिए इन खातों को बनाए रखने की शुद्ध लागत आने वाले महीनों में जमा आधार बढ़ने पर ही कम हो जाएगी। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।